पृष्ठ संख्या 234 अध्याय 20 सांख्य दर्शन। यह सबसे पुराना भारतीय दर्शन माना जाता है। इसके बीज श्वेताश्वर, प्रश्न, कठ आदि उपनिषदों, महाभारत, गीता, स्मृतियों तथा पुराणों में मिलते हैं। शंकराचार्य ने इसे वेदांत का प्रमुख विरोधी कहा है तथा ब्रह्मसूत्र के रचयिता वादरायण ने इसके श्रुति मूलक होने का खंडन किया है। ये सभी बातें भी इसकी प्राचीनता के प्रमाण हैं। बुद्ध पूर्व इस पर कपिल मुनि ने मूल ग्रंथ तत्व समास में इसको अति संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया था। पीछे इसी के विस्तार के लिए इन्होंने सांख्य प्रवचन सूत्र, जिसे सांख्य सूत्र भी कहते हैं, लिखकर इसकी व्याख्या की। कपिल ही इसके प्रवणेता माने जाते हैं। गीता में कृष्ण ने कपिल को अपनी विभूतियों में बताया है, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। पर कपिल की दोनों रचनाएं आज तक मिली नहीं, संभवतः नष्ट हो गई। इसी से अब ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका इसका मूल स्रोत माना जाता है। सांख्य प्रवचन सूत्र को अधिकांश विद्वान 14वीं शती की रचना मानकर इसे कपिल प्रणीत नहीं स्वीकार करते। सांख्य कारिका पर कई टीकाएं लिखी गई, जिनमें मुख्य हैं वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी, जो अधिक मान्य है। गौड़पाद ने भी टीका लिखी है। विज्ञान भिक्षु का सांख्य प्रवचन भाष्य और सांख्य सार भी इस दर्शन के चर्चित ग्रंथ हैं। इसके सांख्य नामकरण के संबंध में कई मत प्रचलित हैं। एक तत्व की सांख्य इस दर्शन वे 25 निर्धारित की गई है, अतः संख्या निर्धारण होने के कारण इसे सांख्य कहा गया है। गीता में इसे तत्व संख्यान कहा गया है। दो, सांख्य के प्रणेता का नाम कुछ लोग शंख बताते हैं, जिसके कारण इसको यह नाम दिया गया है, किंतु यह अमान्य तर्क है, क्योंकि इसके प्रणेता तो कपिल हैं। तीन, सांख्य के दो अक्षर हैं, सम अर्थात सम्यक, धनख्या ज्ञान। इस प्रकार सांख्य सम्यक ज्ञान या आत्म विषय ज्ञान वाला दर्शन है, क्योंकि इसमें पुरुष और प्रकृति का अलग अलग ज्ञान दिया गया है। यही सही प्रतीत होता है। इसी से इसे द्वित तत्व पुरुष और प्रकृति प्रतिपादक दर्शन कहते हैं। सांख्य की विशेषता है कि इसमें दो तत्वों की मान्यता है, प्रकृति और पुरुष। यह अन्य दर्शनों के ईश्वर और शिष्यवाद का खंडन करता है। यद्यपि ईश्वर का खुला विरोध नहीं करता, पर उस पर मौन रहता ही है, रहना ही इसकी सत्ता का न मानना है। पर पुरुष आत्मा के अनेकता को मानता है। वह अकेला भारतीय दर्शन विकासवाद को प्रस्तुत करता है। अपनी महत्ता के कारण वेदांत के बाद यह दूसरा महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है। एक, कार्य कारणवाद या सत्कार्यवाद, यही सांख्य के प्रकृतिवाद का आधार है। इसे सत्कार्यवाद भी कहते हैं। यह मान्य है कि किसी भी कार्य के लिए कोई कारण होता है, पर क्या कार्य कारण में उत्पत्ति से पहले विद्यमान रहता है अथवा नहीं, इसे सकारात्मक स्वीकार करना सत्कार्यवाद है और नहीं मानना असत्कार्यवाद। सत्कार्य शब्द दो शब्दों को योग से बना है, सत स्थिति तथा कार्य परिणाम से पूर्व। इसका अभिप्राय है कि पहले से ही कार्य की स्थिति का कारण में विद्यमान रहना। अतः सत्कार्यवाद कारण में पहले से ही कार्य की सत्ता को स्वीकार करता है। कारण में कार्य बीज रूप में बना रहता है और कार्य में कारण स्वभाव रूप में स्थित होता है। इसमें कार्य अव्यक्त रूप में होता है। यहाँ उपादान का अर्थ नया आरंभ या उत्पादन नहीं कह सकते, बल्कि कारण में निहित अव्यक्त कार्य का पूर्णतः अभिव्यक्त होना है। यहाँ विनाश से कार्य अभिप्राय व्यक्त कार्य का अपने अव्यक्त कार्य का पूर्णतः अभिव्यक्त होना। यहाँ विनाश से अभिप्राय व्यक्त कार्य का अपने कारण में फिर विलीन हो जाना है, न कि सर्वथा विनाश। इस प्रकार सृष्टि या उत्पत्ति आविर्भाव है और प्रलय या विनाश तिरोभाव है। यहाँ कार्य और कारण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कार्यावस्था में कारण कार्य को अभिव्यक्त करता है तथा कारणावस्था में कार्य बीज रूप में कारण में निहित रहता है। जैसे दही दूध का नया कार्य नहीं है, यह दूध में पहले से रहता है जो समय से प्रकट होता है, यही सांख्य मत है। दूसरी ओर असत्कार्यवाद में कार्य प्रारंभ होने से पूर्व कार्य की सत्ता होती ही नहीं, कार्य पूर्णतः नया प्रारंभ या उत्पादन है। इसी से इसे आरंभवाद कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, अ नहीं प्लस सत इज इक्वल टू अस्तित्व प्लस कार्य इज इक्वल टू कार्य के आरंभ होने से पूर्व उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे मिट्टी में पहले से घड़ा का तत्व निहित नहीं होता, ऐसे इसी से यहाँ विनाश का अर्थ है सर्वथा विनाश। इस मत के समर्थ हैं हीन यानी बौद्ध न्याय वैशेषिक तथा कुछ मीमांसक। सांख्य अपने मत सत्कार्यवाद के समर्थन तथा असत्कार्यवाद के खंडन में निम्न युक्तियां देता है। एक, यदि कार्य कारण से पहले में पहले से न रहता तो कारण से कार्य का आविर्भाव कैसे होता, जैसे तेल बालू में अविद्यमान होने से उसमें नहीं निकाला जा सकता पर सरसों में पहले से रहने से निकाला जाता है। दो, यह प्रत्यक्ष है विशेष कारण से ही विशेष कार्य होता है, ऐसा नहीं कि किसी कारण से किसी कार्य को कर लिया जाए। जैसे तेल के लिए तिल पेरना ही पड़ेगा क्योंकि तिल में तेल पहले से है। तीन, किसी भी खास कार्य का प्रादुर्भाव एक खास कारण से होता है, जैसे जब भी तेल निकलेगा तो तिल या सरसों से ही। स्पष्ट है विशेष कार्य विशेष कारण में पूर्व निहित होता है। चार, शून्य से उत्पादन नहीं हो सकता, यदि कार्य कारण में निहित न हो तो कारण के प्रयास पर कार्य नहीं होगा। पाँच, एक ही वस्तु अव्यक्त और व्यक्त स्थिति में क्रमशः कारण और कार्य नाम से जाने जाते हैं, जैसे तेल अव्यक्त या कारण में तिल कहा जाता है पर व्यक्त स्थिति में तिल का तेल कहा जाता है, इसी को कारण भावात कहा गया है। छः, यदि कारण कार्य से भिन्न होता या मात्र संयोजन होता तो इनका संबंध या विलगाव नहीं होता। इन तर्कों से सत्कार्यवाद की पुष्टि की गई है। सत्कार्यवाद के दो रूप हैं, भावात्मक और निषेधात्मक। भावात्मक को परिणामवाद कहते हैं क्योंकि इसमें मानते हैं कि कार्य कारण का परिणाम होता है, जैसे मिट्टी का परिणाम घड़ा है तथा दूध का परिणाम दही है। यह कार्य में कारण का वास्तविक रूपांतरण हो जाता है। इस मत को सांख्य योग रामानुज के विशिष्टाद्वैत में स्वीकार किया गया है पर सांख्य और रामानुज में अंतर है। सांख्य विश्व को प्रकृति का परिवर्ती रूप मानते हैं पर रामानुज ब्रह्म का परिवर्तित रूप, अतः एक प्रकृत परिणामवादी है पर दूसरा ब्रह्म परिणामवादी। दूसरा पक्ष निषेधात्मक विवर्तवाद कहा जाता है। यहाँ कारण का कार्य में रूपांतर वास्तविक न होकर विवर्त या आभास प्रतीति होता है, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना वास्तविकता से दूर है, रस्सी सांप नहीं हो जाता है पर हम ब्रह्मवश वैसा आभास कर लेते हैं। शंकर इसके प्रमुख समर्थक हैं। उनका मानना है कि ब्रह्म एक है, नाना रूपात्मक जगत में उसका रूपांतरण होना असंभव है, साथ वह अपरिवर्तनशील होने से रूपांतरित कैसे हो सकता है, अतः यह विश्व ब्रह्म का विवर्त है। इस पक्ष के दूसरे समर्थक शून्यवाद मूल विज्ञानवाद आदि हैं। इनके सिद्धांत को सांकर वेदांत ब्रह्म विवर्तवाद शून्यता विवर्तवाद तथा विज्ञान विवर्तवाद कहते हैं। सांख्य का सत्कार्यवाद प्रकृति परिणामवाद है। इसको सिद्ध करने के लिए निम्न श्लोक में 5 युक्तियां दी गई हैं। असत कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावोच्च सत्कार्यम् सांख्यकारिका। एक, असत कारणात्, असत से सत का निर्माण होना नहीं हो सकता, जो सत है उसे भला सत कैसे सिद्ध किया जा सकता है, जैसे शशक खरहे के सिर पर सिंह होना कैसे सिद्ध हो सकता है, उसी प्रकार यदि कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान न हो तो कारण कैसे कार्य को उत्पन्न करेगा, अतः सत्कार्य सिद्ध है। दो, उपादान ग्रहणात्, उपादान कारण कार्य को अपने में ग्रहण किए रखता है। तेल निकालने के लिए सरसों या तिल को इसलिए चुनते हैं कि इसमें पहले से तेल अव्यक्त रूप में विद्यमान है, अगर ऐसा न हो तो बालू या कंकड़ को ले लो ले तो वह नहीं देंगे, इसलिए कार्य का उपादान कारण में पूर्व विद्यमानता सिद्ध है। तीन, सर्वसंभवाभावात, सभी कारणों में सभी कार्यों का अभाव रहता है, विशिष्ट कारण में ही विशिष्ट कार्य निहित होता है, जैसे तेल बीजों में तेल का भाव होना इसे सिद्ध करता है। चार, शक्तस्य शक्य कारणात्, शक्त कारण जिस कारण में किसी कार्य के उत्पन्न करने की शक्ति है उसी के शक्य कार्य अनिष्ट कार्य संभव होता है। स्पष्ट है कि कारण में पूर्व कार्य की विद्यमानता ही कार्य उत्पन्न करने की उसकी शक्ति है। जैसे तेल वाले बीजों में पूर्व से तेल का होना, यह कार्य की योग्यता कारण की दृष्टि से आकी गई है, इससे यह सिद्ध हुआ। 5 कारण भावात्, कारण और कार्य दोनों अभेद है, भेद इनका व्यावहारिक है। कार्य कारण और व्यक्तावस्था है और कारण कार्य का अव्यक्तावस्था। जैसे मिट्टी घड़े की अव्यक्ता अवस्था है और घड़ा मिट्टी का व्यक्तावस्था है, अतः यह सिद्ध हुआ। इस पर अनेक आपत्तियां की गई है। एक, पहले से कार्य का कारण में विद्यमानता होने से कार्य की व्याख्या करना कठिन हो जाता है। 2 यदि कार्य कारण में पहले से ही है तो कारण को कैसे निमित्त कारण कहा जाए। 3 कार्य की पूर्व उपस्थिति के कारण कार्य कारण में भेद करना कठिन है। 4 पहले से कार्य के अव्यक्त होने के कारण उसके व्यक्त होने पर यह कहना उचित होगा कि कार्य से कार्य की उत्पत्ति हुई। 5 अगर कार्य कारण मिले हैं तो उनका प्रयोजन एक होना चाहिए और नाम भी दो नहीं एक होना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विकासवाद के सिद्धांत सत्कार्यवाद की देन है तथा प्रकृति की महत्ता इसी आधार पर यहाँ सिद्ध की गई है। 2 प्रकृति, जगत कार्य कारण का प्रवाह है, पर जगत कार्यों के श्रृंखला का कारण क्या है? पहले ही देखा गया है कि सांख्य ने 2 बिंदुओं पर विशेष बल दिया है, पुरुष और प्रकृति। क्या यह आत्मा या पुरुष है? यह नहीं स्वीकार किया जा सकता क्योंकि वह इससे मुक्त है। न वह किसी वस्तु का कार्य है न कारण। चार्वाक, वैशेषिक, न्याय मीमांसा, बौद्ध तथा जैन इसे 4 भूतों, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को योग मानना है। पर सांख्य संसार में सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार आदि और स्थूल जिनका आकार दिखाई पड़ता है, 2 आकार के पदार्थों को योग मानता है। इसलिए इसका कारण वही हो सकता है जो इन दोनों प्रकार के पदार्थों की व्याख्या कर सके। चूंकि भूतों से सूक्ष्म पदार्थों की व्याख्या न होने से सांख्य इनके परमाणुओं को कारण नहीं मानता। महायान बौद्ध दर्शन इसे चेतना मानता है, पर इससे सूक्ष्म की व्याख्या तो हो सकती है किंतु स्थूल की नहीं। इससे यह भी सांख्य को अमान्य है, अतः जगत के कारण स्वरूप प्रकृति को ही मानता है। यह सभी स्थूल वस्तुओं की जननी होने के साथ सूक्ष्म पदार्थ भी है, इसलिए जगत के कारण की पूर्व व्याख्या प्रकृति से ही संभव मानता है। प्रकृति संसार का कारणभूत प्रथम भौतिक तत्व है, इससे इसे प्रधान भी कहा जाता है। भौतिक पदार्थ होने से यह जड़ है, विकासमान होने से इसे ब्रह्म कहा जाता है। यह विश्व का कारण होने से सभी पदार्थों में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। इसका ज्ञान कार्यों के से कारण रूप अनुमान से होने से यह अनुमान है, यह एक है, इसे जड़ कहा गया है। माया कहे जाने से कारण या वस्तुओं को सीमित करता है, इसके निरंतर गतिशील होने के कारण इसे शक्ति कहते हैं। यह सामान्य तथा अनेक पुरुष भोग्य है, यह विवेक शून्य और स्वतंत्र है, यह व्यापक तथा नित्य है, यह त्रिगुणात्मक सतरसतम युक्त होने से सुख दुख का अनुभव करता है, पर अचेतनता के कारण यह अनुभवहीन है। समस्त जगत इसी से उत्पन्न होने से तथा पदार्थों की सर्जिका होने के कारण यह प्रसव धर्मिणी है। प्रकृति शाश्वत है और दिक् काल की सीमा से अबाध्य है, यह निरवय और अदृश्य है, यह व्यक्तित्वहीन है क्योंकि व्यक्तित्व के लिए आवश्यक बुद्धि और संकल्प का इसमें पूर्णता अभाव है। सृष्टि के समय संसार प्रकृति की गोद में बना रहकर कार्य रूप में अभिव्य होता है और प्रलय काल में पुनः यह प्रकृति में समाहित हो जाता है। यह अविद्या है क्योंकि यह ज्ञान का विरोधात्मक है, प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता। इसकी सिद्धि के लिए निम्न श्लोक द्वारा 5 युक्तियां दी गई हैं। वेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तिः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्य रूप्यस्य सांख्यकारिका। 1 वेदानां परिमाणात्, यह संसारी नियम है कि जगत के पदार्थ अपने से भेद या भिन्नता की ओर बढ़ते हैं। जैसे संसार के पदार्थ सीमित, परतंत्र, अनित्य, अव्यापक और अनेक हैं, पर विश्व का कारण इन्हें न बताकर इनसे भिन्न, असीमित, स्वतंत्र, नित्य, व्यापक और एक बताया गया है। यह प्रकृति की ओर संकेत करता है। 2 समन्वयात्, जगत के सभी पदार्थों में गुण का समन्वय होता है, इसे एक ही क्रिया समय समय पर गुणों की प्रधानता के कारण पदार्थों में सुख दुख तथा मोह उत्पन्न करते हैं। जैसे प्रेमिका प्रियतम को सुखी, दूसरी प्रेमिका को दुखी तथा अन्य लोगों को मोहित करती है। यह तीनों गुणों का समन्वय त्रिगुणात्मक प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करता है। 3. शक्ति प्रवृत्तेश्च, कारण की शक्ति से समस्त कार्य उत्पन्न होता है, इसलिए यह जड़ संसार शक्तिशाली की प्रकृति से उद्भूत होता है। 4. कारण कार्य विभागात, संसार अपना कारण स्वयं नहीं हो सकता। जब कार्य का संपादन होता है तो कारण और कार्य में भेद होता है। इससे स्पष्ट है कि सभी संपादित कार्य अव्यक्त कारण से उत्पन्न हो कि उसका कोई कारण न हो, अन्यथा यह क्रम अनंत तक चलेगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। ऐसा अव्यक्त कारण प्रकृति ही है। 5. अविभागात वैश्व रूप्यस्य, सृष्टि के समय कारण से कार्य उत्पन्न होता है, प्रलय की स्थिति में सभी कार्य कारण में विलीन होकर अभिन्न हो जाते हैं। यह कारण ऐसा हो कि उसी से सभी वस्तुएं उत्पन्न हो और उसी में उनका लय हो, यह प्रकृति ही जो उत्पन्न भी करती है और अपने में समाहित भी कर लेती है। प्रकृति के गुण, ये प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहते हैं। गुण 3 है, सत्व रज और तम, ये प्रकृति के द्रव्य हैं। इन्हें विशेषण के रूप में प्रयोग करना यहाँ भ्रांति मूलक है। ये द्रव्य होने के कारण प्रकृति के साथ रहते हैं और उससे अलग भी हो जाते हैं। ये साम्यावस्था में प्रकृति में होते हैं। गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति, यह बात है कि किसी समय किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है, पर तब दूसरे तो दो हट नहीं जाते, वे भी बने रहते हैं और उसमें गौर रूप में विद्यमान होकर प्रधान की सहायता करते हैं। इनकी प्रधानता और गौरता पुरुष या आत्मा के प्रयोजन के अनुसार होती है। इनको गुण कहे जाने के पीछे कारण है कि ये प्रकृति की अपेक्षा गौर है तथा आत्मा के उपकरण है। इसका दूसरा अर्थ डोरी भी होता है, जिसमें 3 पतली रस्सियां एक में बटी होती हैं। ये तीनों गुण एकाकार होकर प्रकृत रूपी रस्सी का काम करती हैं और इसी से पुरुष आत्मा रूपी पशु संसारी बंधन में बंधता है। प्रकृति से इसका बंधन नहीं है, ये प्रकृति के गुण धर्म नहीं है, ये तत्व है जिनसे प्रकृति बनती है। ये प्रकृति के संघटक तत्व हैं, निर्माण तत्व हैं। इनसे अलग होकर प्रकृति अस्तित्वहीन है। ये अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय नहीं होते, ये अनुमान द्वारा जाने जाते हैं। ये अलग अलग लोगों में सुख दुख का तथा उदासीनता उत्पन्न करते हैं। जैसे सफल व्यक्ति को सुखी, असफल को दुखी तथा तटस्थ को उदासीन बनाते हैं। प्रत्येक गुण की अपनी विशेषताएँ होती है। सत्व गुण सत्व स्वच्छता शुद्धता ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक होने से यह इंद्रियों के साथ होकर पदार्थ को प्रकाशित करता है तथा बुद्धि और मन विषयों को ग्रहण करता है। यह हल्का और लघु होने से ऊर्ध्वगामी होता है। इसका रंग श्वेत है। शुभ होने से यह सुख प्रदाता है। इसी से विवेक दया श्रद्धा प्रीति सरलता आदि भाव प्रकट होते हैं। रजोगुण धूल दूषित होने या अशुद्धि का प्रतीक है। यह स्वयं गतिशील तथा दूसरे तत्वों का प्रेरक होता है। यही इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त करता है। मन के चंचल होने से यह दुख उत्पन्न करता है, जिसे क्रोध द्वेष ईर्ष्या आदि के भाव उत्पन्न होने से दुखानुभूति होती है। उत्तेजक होने से यह रक्त वड़का है। सत्व या तमस निष्क्रिय गुण होने पर भी इसके सानिध्य में सक्रिय हो जाते हैं। तमोगुण अंधकार का प्रतीक है। यह अज्ञानता फैलाता है। यह भारी होने से नीचे की ओर ले जाता है। यह प्रकाश तथा सुख दुख का अवरोधक है। यह निष्क्रियता और जड़ता उत्पन्न करता है। सत्व तथा रजस गुणों की क्रियाओं के अवरोधक होने से यह आलस्य मूर्छा प्रभार निद्रा आदि के प्रति मोह उत्पन्न करता है। इसका रंग तम काला है। इस प्रकार ये तीनों परस्पर विरोधी हैं, पर सहयोग द्वारा पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। इसी से ये संयुक्त हैं, न कभी जुटते हैं न अलग होते हैं। जिस प्रकार दीपक तेल और बत्ती तीनों अलग अलग पदार्थ हैं पर एक साथ मिलकर प्रज्वलित होकर प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार ये परस्पर विरोधी गुण एक साथ मिलकर पुरुष के कार्य की सिद्धि में सहायक होते हैं। क्योंकि पुरुष कुटस्थ निष्क्रिय नित्य है और प्रकृति परिमाणी नित्य है, क्रियाशील है। प्रतिक्षण परिणामिनो ही सर्वभावारिते चितिशक्ते हैं। गुणों की साम्यावस्था प्रलय का बोधक है और विषमावस्था सृष्टि का। इस प्रकार गुणों में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। स्वरूप परिवर्तन, इसमें एक गुण अपने वर्ग गुणों में मिलता है तब वह विनाश या प्रलय की स्थिति होती है। 2. विरूप परिवर्तन, इसमें एक वर्ग के गुणों का दूसरे वर्ग के गुणों में सम्मिलित होने से उद्वेलन होता है, जिससे विकास की क्रिया आरंभ हो जाती है। यही सृष्टि का कारण है। वैशेषिक और सांख्य में गुणों प्रति दृष्टिकोण में भिन्नता है। वैशेषिक गुण को विशेषण मानता है, पर सांख्य द्रव्य को वैशेषिक गुणों को गुण विहीन कहता है, पर सांख्य इनमें अपना गुण देखता है। वैशेषिक 24 गुण गिनाता है, पर सांख्य केवल 3। वैशेषिक गुणों को जहां निष्क्रिय बताता है, वहीं सांख्य इसे सृष्टि और विलय का कारण बताकर सक्रिय सिद्ध करता है। पुरुष आत्मा। सांख्य ने प्रकृति की तरह दूसरा स्वतंत्र तत्व पुरुष को माना है, पर प्रकृति से पुरुष भिन्न है, भले ही दोनों स्वतंत्र हैं। पुरुष प्रकृति से भिन्न चेतन है, यह गुणों से रहित होने से त्रिगुणातीत है, जबकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति एक है पर पुरुष अनेक। पुरुष कार्य कारण मुक्त है, पर प्रकृति इससे संयुक्त है। पुरुष अपरिणामी है, नित्य है, जबकि प्रकृति परिणामी है। प्रकृति परिवर्तनशील है, पर पुरुष अपरिवर्तनशील। वह न किसी से उत्पन्न है और न किसी का कार्य है। पुरुष में चेतना का कारण है कि चैतन्य आत्मा उसमें निवास करता है, जो कोई तत्व नहीं है बल्कि उसका स्वभाव है। पर वैशेषिक इसे आत्मा का आगंतुक गुण मानते हैं। जब यह मन, शरीर और इंद्रियों के संसर्ग में आता है, इससे वह विषय का ज्ञान और अनुभव प्राप्त करता है। वह न मन है, न इंद्रिय है, न शरीर है, न बुद्धि या अहंकार है, बल्कि इन सभी से भिन्न है। मन और इंद्रिया अनुभव के साधन है, पर पुरुष अनुभव से दूर है। शरीर भौतिक है, पर यह शाश्वत है। बुद्धि और अहंकार अचेतन है, पर यह चेतन है। इसकी सत्ता स्वयं सिद्ध है, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। वह देश, काल और दिशाओं की सीमा से बाहर है। यह शाश्वत है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। निर्गुण होने के कारण यह पाप पुण्य से रहित है। राग द्वेष विहीन होने के कारण सुख दुख का अनुभव इसे नहीं होता। यह स्वयं ज्ञाता है। जितने जीव संसार में हैं उतनी आत्माएं हैं। यह निर्विकार है, क्योंकि शुद्ध होने से यह विकारी नहीं हो सकता। सांख्य का आत्मा संबंधी विचार दार्शनिकों से भिन्न है। चार्वाक इसे शरीर से अभिन्न भौतिक मानता है, पर सांख्य इसे अभौतिक बताता है। बौद्ध इसे विज्ञान का प्रवाह मानते हैं, पर सांख्य इसे नित्य बताता है। शंकर ने आत्मा को एक और आनंद का केंद्र माना है, पर सांख्य इसे अनंत और गुणातीत होने से आनंदहीन मानता है। पर शंकर ने के इस मत का विरोधी है कि एक ही आत्मा सभी जीवों में व्याप्त है। सांख्य प्रकृति को एक मानता है और आत्मा को अनेक। पुरुष के स्वतंत्र सत्ता की सिद्धि, इसके लिए सांख्य कारिका के निम्न श्लोक में 5 युक्तियां दी गई हैं। संगात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यायात् दधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। एक, संघात पराथत्वात्। संघात व्यक्त कार्य दूसरे के लिए निर्मित होता है। विभिन्न तत्वों का मिलन संघात है। इसका उद्देश्य है दूसरे के लिए होना। प्रकृति के समस्त कार्य अपने लिए न होकर चेतन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। मन, इंद्रिय, गुण, अहंकार आदि पुरुष के भोग प्रयोजन या अपवर्ग की सिद्धि में लगे रहते हैं। इस प्रकार अव्यक्त या व्यक्त कार्य पुरुष के लिए होने से पुरुष की सत्ता सिद्ध करता है। 2. त्रिगुणादि विपर्यायात्। संसार के सभी वस्तुएं त्रिगुणात्मक है, इनसे सुख दुख की अनुभूति होती है, पर इन्हें त्रिगुण तभी कहा जा सकता है जब कोई अत्रिगुण हो, जिसमें कोई गुण न हो। यह सिद्ध है कि एक के रहने पर ही दूसरे की सत्ता होती है। जैसे अचेतन की सत्ता चेतन के कारण, अपरिणामी की परिणामी के कारण आदि होगी। अतः प्रकृति की त्रिगुणात्मक सत्ता तभी है जब गुणातीत पुरुष है। यह पुरुष की सत्ता का प्रमाण है। 3. अधिष्ठान। अधिष्ठानात्। संसार की सभी वस्तुएं अचेतन है। सुख दुख बुद्धि अहंकार आदि भी अचेतन है, पर इनका अनुभव किसी चेतन को ही हो सकता है। वही चेतन है आत्मा, जो इनका अनुभव करता है, प्रकाशित करता है, इन्हें नियंत्रित करता है, अतः इसकी सत्ता है। 4. भोक्तृभावात्। प्रकृति तथा इसकी सभी वस्तुएं भोग्य हैं, किंतु इनका भोक्ता प्रकृति नहीं हो सकती, क्योंकि यह अचेतन है। अतः चेतन ही इसका भोक्ता होगा। वह चेतन पुरुष है, इससे यही भोक्ता है, इसे पुरुष की सत्ता सिद्ध है। 5. कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। कैवल्य मोक्ष है। दुखों को सदा के लिए समाप्त करना ही कैवल्य कहा जाता है। ज्ञानी व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, इसके लिए वे दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति के लिए उद्यत रहते हैं, पर अत्यंतिक निवृत्ति आत्मा के विवेक जनित ज्ञान पर निर्भर होती है, इसे पुरुष की सत्ता है। असंख्य पुरुषों की सिद्धि, आत्मा अनेक है, जितने जीव हैं उतनी ही आत्माओं का होना सांख्य मानता है। इसके लिए उसने निम्न श्लोक में 5 युक्तियां दी हैं। जनन मरण कारणानाम प्रतिनियम, जन्म मरण कारणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवित्तेश्च पुरुष बहुत्व सिद्धम त्रैगुण विपर्याया चैव। 1. जनन प्रतिनियमात, जन्म लेना और मरना एक सामान्य क्रिया है। यदि पुरुष एक होता तो एक के जन्म लेने से पूरी सृष्टि का जन्म होता और एक के मरने से सारी सृष्टि समाप्त हो जाती, पर ऐसा न होना आत्मा के अनेकता या असंख्यता सिद्ध होता है। 2. मरण प्रतिनियमात, कोई आज मरता है, कोई पहले मरा है, कोई आगे मरेगा। इसका अभिप्राय है कि सब में अलग अलग पुरुष है, यह पुरुष की अनेकता का बोधक है। 3. करणा नाम प्रतिनियमात, इंद्रियों में भी व्यक्तियों की भिन्नता है, कोई अंधा है तो कोई उसके शरीर के पुरुष का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। अगर एक व्यक्ति सुगंध ले रहा है तो उसकी आत्मा भी गंध की अनुभूति करती है, न कि रस का, जैसे शरबत पीने वाले व्यक्ति की आत्मा अनुभूति कर रही है, जिससे आत्मा की अनेकता सिद्ध है। 4. युगपत प्रवित्तेश्च, 4. अयुगपत प्रवित्तेश्च, व्यक्तियों की प्रवृत्तियों में भी भिन्नता होती है। प्रवृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक कर्मेंद्रियों द्वारा किया गया शारीरिक या वचन संबंधी कार्य तथा दूसरा अंतःकरण द्वारा किया गया मानसिक कार्य। इन प्रवृत्तियों से संबंधित कार्य के कर्ता भिन्न भिन्न होते हैं, तभी वे अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कोई चलता है, कोई सोता है, कोई दुख का अनुभव करता है और कोई सुख का। इनके कर्ताओं के भीतर चेतन आत्मा भिन्न भिन्न होगी, जिससे उनके अनुभव भी भिन्न भिन्न होते हैं, अतः आत्मा की भिन्नता प्रमाणित है हुई। 5. त्रैगुण विपर्यायात चैव, सृष्टि त्रिगुणात्मक है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में किसी न किसी एक गुण की प्रधानता होती है, दोनों शेष गुण उससे कम होते हैं। इस अनुपातिक भिन्नता के कारण प्रत्येक शरीर के अंदर स्थित आत्मा में भेद होता है, उससे आत्मा की अनेकता ज्ञात होती है।